दुबई बंदा जा रहा है तो वो क्या यहाँ से सामान इधर से भर के लेके जाएगा जहाँ पे दुनिया जो है वो बैठी हुई है। तो एक एक छोटे इतने इतने छोटे छोटे बक्से थे हमारे पास, मेरे और मेरे बेटे के पास। हमने कहा जी वो अच्छा जी वो फिर जी अच्छा उसके बाद कैन यू इमेजिन एंड इट्स एन इंटरनेशनल फ्लाइट एयर कैनेडा राइट। प्लेन में बैठे हैं हम, एक तो जी तूफान आ गया तो इसलिए चलो वी अंडरस्टैंड तूफान आ गया तो आपको बैठना पड़ेगा। वो जी जो पेपर्स जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंड करने के लिए चाहिए वो पेपर्स नहीं है हमारे पास। कैन यू इमेजिन दिस थिंग। उसके लिए जी और एक घंटा लगाया, 6 आवर्स लाइक दिस, 4 आवर्स ऑन वो, 2 आवर्स ऑन प्लेन, 14 घंटे की फ्लाइट ऑन दुबई एयरपोर्ट, 10 मिनट्स इन एंड आउट राइट। आप वहां पे गए, वहां पे 50 बंदा बैठा हुआ है इमिग्रेशन के ऊपर, उधर से आपने अपना वो किया, उसने आपका स्कैन किया, ठप्पा लगाया, जाओ जी, स्कैन किया, ठप्पा लगाया, जाओ जी, ठीक है जी, सामान आपने उठाया, बाहर आप आ गए, दैट्स इट।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
जी
तो ये है महेश भाई। अच्छा जी, टोरंटो के एक बड़े लॉन्ग टाइम लेजिस्लेटर हैं, पीटर टैबन्स जो हैं, वो अब इंटरम पीरियड में ये जो एनडीपी है उसको हेड करेंगे, क्योंकि आपको पता ही, हमने आपको ये खबर बताई थी कि इलेक्शंस के बाद एंड्रिया हॉर्वेथ ने कहा था कि अब वो कंटिन्यू नहीं करेंगी, तो उनकी जगह पे ये बड़े खुश हुए आज, उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया, उन्होंने कहा थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। आपको पता ही है कि ये पहले डिस्टेंट थर्ड होती थी जो एनडीपी होती थी, लेकिन 2018 में अंडर हॉर्वेथ ये जो है अपोजिशन के अंदर आ गई थी, हालांकि इनकी जो सीटें हैं अब इस इलेक्शन में तो 31 पे आ गई हैं, नीचे आ गई हैं, लेकिन फिर भी जो है ये अभी भी ऑफिशियल ऑपोजिशन है। तो उनका आज ये जो है इन्होंने शुक्रिया अदा किया है पीटर टैबन साहब ने, और उन्होंने कहा जी कि लोगों ने अभी भी हमारे पे ट्रस्ट शो किया और हमको ऑपोजिशन बनाया, तो हम जो है फोर्ड गवर्नमेंट को खींचते रहेंगे इन चीजों, लॉन्ग टर्म केयर के लिए, नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स, क्लाइमेट, और ये जो हेल्थ केयर वेट टाइम्स हैं, वर्कर के जो वेजेस हैं उसके लिए। अब ये जो लीडरशिप रेस है एनडीपी की ऑन्टेरियो के लिए, इसके अंदर और भी बहुत सारे नेम्स आ गए हैं, एक तो लॉरा मे लिंडो फ्रॉम किचनर सेंटर, और मैरिट स्टाइल्स फ्रॉम डेवनपोर्ट, एंड वेन गेट्स फ्रॉम नियाग्रा फॉल्स। तो ये लोग भी जो हैं इसमें शामिल हो गए हैं, तो अब देखेंगे कि इनमें से कौन जीत के सामने आएगा। टोरंटो का जो पार्क डेल का एरिया है जी, वहां पे काफी लोगों को मुश्किलें आ गई हैं, क्योंकि उनको एविक्शन नोटिस मिल गए हैं बेचारों को, उनको कहा जी ये निकल के जाओ। क्यों क्यों निकल के जाओ? क्योंकि गर्मी शदीद थी, इन्होंने जी एसी लगा लिए, तो वो जो थे इनके इनको जो मैनेज कर रहे हैं इसको, द माइरेट ग्रुप जो है, उन्होंने कहा जी या तो आप हाइड्रो के बिल दो, ज्यादा बढ़ा के दो, क्योंकि अब हमें बहुत ज्यादा बिल आ रहा है, और एसी जो है इसके भी बिल दो, या कि फिर ये खाली करो। ये जो है दिस इज ऑन ये 30 हाउस होल्ड एट 130 जेम्सन एवेन्यू साउथ ऑफ किंग स्ट्रीट वेस्ट, तो वहां पे जी इनको ये मिला है। अब वो कह रहे हैं जी हम सारों को लेटर्स लिख रहे हैं, अपने जो लोकल एमपीपी है भुतीला गरपुचे उसको भी लिखा है, और पॉइंटडेल ऑर्गेनाइज जो एक कंपनी है जो कि ये नेबरहुड पावर के ऊपर काम करती है उससे भी हमने बात की, और लैंडलॉर्ड जो है मायरिट ग्रुप वाले उनसे भी अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ये 15 साल से यहां पर रह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमें निकाल देंगे तो हम किधर जाएंगे। बट दैट्स ओनली फेयर माजिद भाई, देखे ना चीजों की कीमतें कितनी ऊपर चली गई हैं।
इट वर्क्स बोथ वेज। एक तो ये है कि भाई
अविक्ट ना करें आप उनको, लोगों को वो कहाँ जाएंगे, हाँ, उनके पास और घर नहीं है,
अगर गर्मी होगी वो अगर एयर कंडीशन लगाया उन्होंने तो,
लेकिन जिन्होंने एयर कंडीशन भी फिर लगाए उनको पैसे भी देने चाहिए ना।
हाँ तो आप, मैं कह रहा हूँ ना बोथ वेज, एक तो इलेक्शन उन्होंने एयर कंडीशन लगा लिया और दूसरे जो ओनर्स है वो कहते हैं भाई हमारा बिल बहुत ज्यादा
आ गया। हाँ तो इस तरह से तो ये हुआ। अच्छा जी, कैपिटल मार्केट्स की अब आप फिर खबरें देते हैं, अब रोज दिया करेंगे इंशाल्लाह। और आज फिर से ब्लूमबर्ग की आज एक रिपोर्ट आई है, और ब्लूमबर्ग की जनाब ये रिपोर्ट जो है वो कह रही है कि बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो हैं अब जो कतार एयर जो है ऑयल उसके अंदर अब स्टेक्स खरीद रहे हैं वो लोग, क्योंकि वो कहते हैं कि कतर इज वन ऑफ दोज कंपनीज जिसके के पास जो है इतनी स्ट्रेंथ है कि वो सारे यूरोप को जो है सप्लाई कर सकता है ऑयल। अच्छा, इसमें इनके साथ शामिल जो हुए हैं, और एक तो शेल है, शेल कंपनी इसमें, ये लंदन बेस्ड जो आपको पता है कंपनी शेल है ये है, इसके जो सीईओ हैं बेन वॉन बर्जन, उन्होंने कहा है जी कि वी आर गोइंग टू साइन कॉन्ट्रैक्ट विद कतारी एनर्जी मिनिस्टर साद अल काबी, जो कि सीईओ भी हैं कतार ऑयल के, उनके साथ। और इसके अलावा ये जो इनका नॉर्थ फील्ड ईस्ट प्रोजेक्ट है, इसके अंदर ऑलरेडी बाकी की जो यूरोपियन कंपनीज हैं जैसे कि टोटल वाले हैं जो कि फ्रेंच हैं और एक कंपनी है वो भी इसके साथ जो है इनके साथ इनके एग्जॉन मोबाइल वगैरह ये सारे लोग जो है कोको फिलिप्स है तो ये सारे जो हैं कतर एनर्जी या कतर ऑयल जो है उसके साथ ये अब डील्स बनाने लगे हैं। वो कहते हैं कि हमने इनको कहा है कतर को कहा है कि तुम लोग आज तक जो है 77 मिलियन टन्स जो है ऑयल निकालते थे अब रीचिंग 2026 तुमको 110 मिलियन टन्स निकालने की जरूरत है। तो कतर ने कहा नो प्रॉब्लम वी हैव अ लॉट ऑफ ऑयल That's fine. So we are ready to, you know. तो ये सारे जी अब ये डील्स उनके साथ बना रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी हम अब बिल्कुल रशिया से कोई नहीं लेंगे तो ना लें रशिया के लिए और बड़ी मार्केट्स हैं जी चाइना सबसे बड़ी मार्केट है उसके लिए चाइना सबसे बड़ी मार्केट है और अब तो श्रीलंका भी उनके पास जाएगा क्योंकि श्रीलंका को चाहिए और भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं रशिया के पास हम बताएंगे आगे चल के आपको ठीक है जी। तो ये है जी अच्छा जी और ये जो है जनाब ये जो प्रोजेक्ट जो शुरू किया है कतार ने इट इज कैन यू इमेजिन इट्स अ 29 बिलियन US डॉलर प्रोजेक्ट जिसके के अंदर ये सारी अब कंपनियां स्टेक्स मांग रही हैं।
वाओ
तो ऐसे है ठीक है जी। अल जजीरा की जनाब आज एक खबर है आपको पता ही है कि हज जो है वो July 7th को होगा और ये उससे पहले एक महीना पहले लोग जो इनके लिए आपको पता ही है हमेशा से ट्रैवल एजेंट को कहते हैं कि भाई हमारा है हज पैकेज दे दो और ट्रैवल एजेंट्स भी जो हैं वो दुनिया के हमेशा कहते हैं कि जी हम हज पैकेज पे बहुत ज्यादा कमाते हैं हज और उमरा पैकेज पे कुछ जो है ट्रैवल एजेंट वो तो डील ही हज और उमरा पैकेज में करते हैं और तो वो कोई करते नहीं है। अब उनको बड़ा डेंट पड़ने वाला है उसकी वजह क्या है अल जजीरा की इस रिपोर्ट के मुताबिक एज ऑफ यू नो जून इन्होंने सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च की है मुवातिफ और इसके ऊपर जो जो भी कोई वेस्टर्न कंट्री से अब हज करने के लिए आना चाहता है वो ऑनलाइन रजिस्टर करेगा। ये जो वेबसाइट है मुवातिफ ये तीन पैकेजेस सिल्वर गोल्ड एंड प्लेटिनम ऑफर कर रही है और आप सिर्फ वही उनमें से एक पैकेज ले सकते हैं। अच्छा लोगों का कहना है कि हम इसलिए ये पैकेज हमें तकलीफ देंगे क्योंकि पहले फॉर एग्जांपल अगर ये पैकेज कह रहा है कि 5 दिन इन मक्का 5 दिन इन मदीना 2 दिन कहीं और स्टे 1 दिन मिना में 1 दिन इधर तो ये हमारे लिए फीजिबल नहीं है क्योंकि फॉर एग्जांपल हम 5 दिन मक्का में ठीक है बट 10 दिन मदीना में हम गुजारना चाहते हैं तो हमारे लिए ये फीजिबल नहीं है। लेकिन जो वेस्टर्न कंट्रीज से जो भी लोग आएंगे अब उनको ऑनलाइन करना पड़ेगा।
इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड
और उन्होंने कहा जी कि उसके अंदर फिर ड्रॉ होएगा उस ड्रॉ में अगर आपका नाम आएगा तो फिर आप हज के लिए जो है क्वालिफाई कर सकते हैं और आप आ सकते हैं।
तो ये जो यहाँ पे जो जिन लोगों ने ऑलरेडी डिपॉजिट दिए हुए हैं इन कंपनीज को
ट्रैवल एजेंट्स को ट्रैवल एजेंट वापस नहीं कर रहे हैं अब उनको
तो वो उसका प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पर मगर गवर्नमेंट इज गोइंग टू गेट इन्वॉल्व इन दैट एंड इट्स गोइंग टू बी सॉर्टेड आउट मगर ये कि इज देयर बहुत सारे लोग तो उतना पैसा सेव करके रखते हैं यानी कि चलो आपने डिपॉजिट रखा है वापस आके हम आपसे बात करेंगे दूसरा पैसा निकाला और डिपॉजिट कहीं और दे दिया वो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब
ये
है कि
हाँ तो ये उसमें यही वो कह रहे हैं लोग कि बहुत सारे लोगों को तो उनके ट्रैवल एजेंट्स ने जैसे ही उनको पता चला उन्होंने इनको पैसे वापस कर दिए लेकिन बहुत सारे ट्रैवल एजेंट्स पैसे वापस नहीं कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं तो वो लोग अब जो है वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि अब वो जो अल जजीरा वाले हैं वो कहते हैं जी हमने सऊदी गवर्नमेंट को जो है और ये मुताफिक जो है इसको हमने कांटेक्ट किया इनकी वेबसाइट को वो कहते हैं यस वी नो दिस प्रॉब्लम एंड वी आर गोइंग टू रिजॉल्व इट इन विद इन 72 आवर्स विच मीन्स कि ये अब ट्रैवल एजेंट्स को भी भेजेंगे एडवाइजरीज कि आप सबके पैसे वापस करो इट इज नॉट गोइंग टू बी थ्रू यू
एग्जैक्टली
ऐसे होगा। अल जजीरा की जनाब एक दूसरी रिपोर्ट है और इसके मुताबिक दिस इज अ वेरी वेरी सैड रिपोर्ट और आप ये देखें जरा कि शो ऑफ करने में कितने आगे हैं जी पेरिस दुनिया की सबसे लिवेबल सिटी है एरफिला एंड टेंग जब ये सारी ये यूरोप के ड्राइंग रूम में बैठ के जब ये सारी बनाते हैं मोस्ट लिवेबल सिटीज की लिस्टें जब बनाते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट है अल जजीरा कहती है ये हमारी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है और हमने अपने जर्नलिस्ट जो थे वो पेरिस भेजे थे और कुछ तो इनके हैं ही पेरिस बेस्ड जर्नलिस्ट जो इनके लिए लिखते हैं वहां से वो कहते हैं अब जब आप पेरिस की सड़कियों पे जाते हैं ना तो पहले तो आपको बड़ी खुशबुएं और बड़े वो एग्जॉटिक चीजें और वो नजर आती थी अभी आपको जो आवाजें सुनाई देंगी वो होती हैं स्पेयर सब चेंज मिस यू यानी कि हमको कोई अगर आपके पास चेंज है तो हमको आप दे दो। वो कहते हैं अब पेरिस की सड़कें ये देखें जी जरा ये पेरिस की सड़कें जो हैं ये भरी हुई हैं अब ये जो जगह जगह पे फुटपाथों के ऊपर बेचारे लोग जो हैं वो बैठे हुए हैं कैंप लगा के इनके पास रहने की जगह नहीं है सोने की जगह नहीं है एंड दे आर सेइंग अल जजीरा सेज स्ट्रीट लाइफ नाउ हैज बिकम अ रियलिटी इन पेरिस पिछले 30 ईयर से गवर्नमेंट जो है एंड बाय द वे हम आपको बता दें कि फ्रांस जो है यूरोप की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी. इसके अंदर द रोड्स आर डोटेड विद दीज होमलेस पीपल. इन्होंने एक पिछले 30 साल से एक प्रोग्राम चला रहे थे और इन्होंने एक लॉ भी पास किया था जिसका मतलब था डालो लॉ. और वो कहते हैं जी कि मैक्रों साहब और उनकी गवर्नमेंट भी ये सोचती है कि किसी को भी सड़क पे नहीं होना चाहिए. एवरीबडी हैज द राइट टू अ होम. और इनकी जो पॉपुलेशन है फ्रांस की उसमें 300,000 आदमी इस वक्त स्ट्रीट्स पे है, यानी होमलेस है. नेशनल स्टैटिक्स ब्यूरो जो फ्रांस का है उसके मुताबिक 146 चिल्ड्रन जस्ट इन द स्पैन ऑफ फ्यू यू नो मंथ्स वॉज बॉर्न ऑन द स्ट्रीट विदाउट एनी मेडिकल हेल्प. पता नहीं उसके मियां ने किया कि उसकी कोई साथ वाले के जो उसमें कैंप में रह रही थी औरत उसने डिलीवर किया, उसने किया. तो वो कहते हैं जी कि हाउसेज की जो कीमतें हैं फ्रांस के अंदर दे आर स्काई रॉकेटिंग और कोई भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है. और जो सड़कें अब ये जो खूबसूरत पेरिस जो किसी जमाने में होता था उसके दोनों तरफ अब आपको बेगर्स मिलेंगे. तो क्राइम भी बढ़ेंगे. यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉशियस अगर आप अपना पर्स लेके जो है वो जा रहे हैं. और वो कहते हैं जी इस वक्त भी एज वी स्पीक, यानी कि वो कह रहे थे जो इनकी रिपोर्ट थी आज की जून 29th की, तो उन्होंने कहा जी आज भी 2 मिलियन बंदा इन फ्रांस इज वेटिंग फॉर हाउसिंग. तो कोई उनके लिए जो है वो घर नहीं है. अच्छा जी, नेटो का जो एल आई है तुर्की है, आज उन्होंने अपना वो जो वीटो पावर यूज कर देते थे और कहते थे कि स्वीडन और जो है ये फिनलैंड जो है ये इसको नहीं मिल सकता है नेटो का जो है वो मेंबरशिप, तो आज उसने वो लिफ्ट कर लिया है. आज जो तुर्की के जो प्रेसिडेंट हैं अर्दोगान साहब, उनकी आज बात हो रही थी नेटो के सेक्रेटरी जनरल जेन स्टॉल्टनबर्ग के साथ. और उसमें इन्होंने कहा जी कि हम ये जो है ये अपने वीटो का पावर हटाने के लिए तैयार हैं. और ये 4 घंटे इनकी दोनों की बातचीत चलती रही और जिसमें कि उन्होंने कहा कि हमारे बहुत सारे जो रिजर्वेशंस हैं अगर ये दो कंट्रीज फिनलैंड एंड स्वीडन जो हैं ये अगर उसको पूरा कर देते हैं तो हम तैयार हैं. और स्वीडन और फिनलैंड दोनों ने एग्री किया है. टर्की ने इनको कहा है, तुर्की ने इनको कहा है कि भाई ये जो बैंड जो आउटफिट है कर्डिश वर्कर्स पार्टी जिसने के 1984 में हमारी गवर्नमेंट को भी टॉपल करने की कोशिश की थी और आर्म्स लेकर आते हैं और आप इनको शेल्टर देते हैं अपने कंट्रीज के अंदर, इनको आप शेल्टर नहीं देंगे. इन दोनों कंट्रीज ने कहा कि यस वी स्टैंड इन सॉलिडैरिटी विद तुर्की. और इन्होंने कहा जी कि ये टेररिस्ट और आउटफिट्स के अगेंस्ट हम काम करेंगे, यस हम करेंगे. फिर उन्होंने कहा जी कि ये जो आपके जो अमेंड करने पड़ेंगे लॉज उन लोगों के अगेंस्ट जो आपके पास आके शेल्टर ले लेते हैं बट वो तुर्की की जो गवर्नमेंट है उसको थ्रेटन करते रहते हैं वहां पे बैठ के, क्योंकि आप कहते हैं जी ये तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये तो फ्रीडम ऑफ ये है,
टेररिज्म हुआ,
हाँ ये भी पार्ट ऑफ टेररिज्म है. तो उसके लिए आप, तो ये सारी शर्तें फिनलैंड और स्वीडन मान गया है और उसके ऊपर फिर तुर्की जो है उसने अपना हटा दिया है इनके ऊपर से बैन. और उन्होंने कहा कि यस यू कैन ज्वाइन नाउ द अलायंस. तो अब ये करेंगे अलायंस को. बाइडन साहब जो है जी वो भी आपको पता ही है पहुंचे हुए हैं वहां पे मैड्रिड में और इनकी भी मुलाकातें जो थी वही थी जो नेटो के सेक्रेटरी जनरल हैं जेन स्टॉल्टनबर्ग के साथ. वहां पर इन्होंने कहा जी कि हम अपना यूएस मिलिट्री री एनफोर्समेंट जो है इनको यूरोप के डिफरेंट हिस्सों के अंदर अब हम बढ़ा रहे हैं. और ये इन्होंने कहा जी कि जो पोलैंड का हमारा हेडक्वार्टर है वहां पर अब हम जो है अपने बंदे बढ़ाएंगे ताकि ये जो सिक्योरिटी चेंज हो रही है उसके ऊपर जो है काम किया जा सके, यानी डायनेमिक्स जो है वो चेंज हो रहे हैं. इसके अलावा 2-3 F-35 जो फाइटर्स हैं वो भी उसके भेजे जाएंगे यूके के अंदर. डिफेंस जो का जो सारा सिस्टम है उसको जर्मनी और इटली में जो है उसको सारे को बूस्ट करेगा अमेरिका. और अपनी जो ब्रिगेड है रोमानिया के अंदर वो अभी थोड़ी सी है, उसको 5,000 ट्रूप्स तक लेकर जाएगा. रोटेशनल डिप्लॉयमेंट्स बाल्टिक के एरिया में चलते रहेंगे. और इसके अलावा जो नेवल डिस्ट्रॉयर्स हैं वो स्पेन रोटा का जो एरिया है वहां पे 4 से बढ़ा के 6 कर दिए जाएंगे. तो ये सारी चीजें आज जी बाइडन साहब ने वहां पे अनाउंस की है नेटो के समिट पे.
कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम लेते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे. 4166201778 हमारा फोन नंबर है.
ट्रकिंग वाले वीरो ध्यान नाल सुनो, ट्रक जिद्दां दा भी चलाउंदे हो मैनुअल जां ऑटोमैटिक, क्विक ट्रक ल्यूब चेते आही ना रखियो. ट्रक दी बढ़िया सर्विस लई क्विक ट्रक ल्यूब लो जी तीजी लोकेशन भी खोलती है, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. आहो जी कोई अपॉइंटमेंट नहीं, ड्राइव थ्रू फैसिलिटी, एग्जिट 579 फ्रॉम हाईवे 401 इन नापनी. क्विक ट्रक ल्यूब द वन स्टॉप शॉप, 519-622-0660 जा quicktrucklube.com. QTL, बिकॉज़ वी केयर.
E4 Entertainment and Trust 99 Logistics present Rewind Tour. Alka Yagnik, Udit Narayan and Kumar Sanu, Saturday, July 2nd at CAA Center, Brampton, in association with Trust Expert, Autobahn, Roadlink, RPD 24, Magnus Furniture and G Media Group. For tickets, visit ticketmaster.ca or call 905-793-1234.
ओ माया मेहंदी रोका या व्यादा होवे मौका प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
स्वीट महल वालियादा बिल्कुल नवा प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर 100 to 700 तक दी कैपेसिटी ते खाना उही लाजवाब स्वीट महल वाला प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर कन्वीनिएंटली लोकेटेड इन बॉन हुणे कॉल करो अते अपनिया पार्टियां बुक कराओ 416-433-9191 416-433-9191
प्रेसिडेंट कन्वेंशन सेंटर
आदमी बुलबुला है पानी का
द पोएट द राइटर द लेजेंड गुलजार लाइव इन कॉन्सर्ट अलोंग विद टॉप बॉलीवुड सिंगर्स
दिल ढूंढता
नाम भूल जाएगा
फ्राइडे जुलाई 15th एट प्रेस्टिजियस रॉय थॉमसन हॉल वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस डोंट मिस इट गुलजार्स इजाजत
और पानी की बहती सतह पर
जी सर वेलकम बैक अगेन एंड 6:15:54 हमारी घड़ियों में हो चुके हैं क्विकली बात कर चलूं डॉक्टर नाजिया रहमान की डेंटिस्ट्री ऑन मिसेस सागा दो लोकेशन आपको सर्व करते हैं येलो एवेंस बुलेवार्ड इन ब्रैम्पटन एंड दूसरी सब आपका लव भला करे 65 मॉन्टपेलियर स्ट्रीट इन ब्रैम्पटन मिस सागा रोड एंड फाइनेंशियल ड्राइव के कॉर्नर पर फैमिली कॉस्मेटिक ब्रेसेस एंड इम्प्लांट डेंटिस्ट्री क्लोज टू योर होम कॉम्प्रिहेंसिव डेंटल केयर मॉर्निंग इवनिंग एंड सेम डे इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स मिल सकते हैं आपको डायरेक्ट बिलिंग टू इंश्योरेंस एंड ईजी पेमेंट ऑप्शन आपके आपके घर में किसी के भी दांतों में कुछ खराबी है तो डॉक्टर नाजिया रहमान से कॉन्टैक्ट करें 905-872-1100 इनका फोन नंबर है ग्रिल एंड हट की बात कर चलूं ग्रिल एंड हट जनाब इमरान खान साहब वो पाकिस्तान वाले इमरान खान साहब नहीं इनका भी ताल्लुक पाकिस्तान से है मगर ये दूसरे इमरान खान है कनाडा के इमरान खान साहब ग्रिल एंड हट के इमरान खान कहते हैं कि पाकिस्तान के लजीज खाने खाने हो तो आप तशरीफ लाइए 1935 ड्रू रोड ड्रू एंड ब्रामली के कॉर्नर पर ग्रिल एंड हट 905-405-8383 इनका फोन नंबर है लास्ट बट नॉट लीस्ट हेयर मैक्स की बात कर चलो हेयर मैक्स जीशान नहीं शिराज यहां पर होते हैं जीशान नहीं जीशान तो 770 में होते हैं इनके पास चाहिएगा ये कानों का खराब कर देंगे आपके नहीं शिराज के पास जाइए अगर आपको या आपके घर में किसी को भी सुनने में कमी आ गई हो या आ रही हो तो हेयर मैक्स एंड अच्छी बात यह है कि साजो आवाज का हवाला देंगे आप या ई आवाज का हवाला देंगे आप तो आपका जो हियरिंग टेस्ट है वो एब्सोल्युटली फ्री कर दिया जाएगा शिराज का फोन नंबर एंड हेयर मैक्स का फोन नंबर है 416-792-8792
जी अच्छा जनाब न्यूयॉर्क टाइम्स की आज ये रिपोर्ट है और सबसे पहले उसी ने ये बताई और फिर उसके बाद बड़े और दूसरे अखबारों में भी और जगहों पे जैसे कि सीएनएन ने भी फिर इसको रिले किया और रॉयटर्स ने भी किया बट पहले ये न्यूयॉर्क टाइम्स के पास आई क्योंकि ये जाहिर है कि ये अंदर की खबरें होती हैं तो ये बड़े ऐख बैरों के पास जब पहले आती हैं उनके बंदे अंदर ही बैठे होते हैं या 770 के पास आती हैं ना हमारा बंदा अंदर बैठा होता है हमें फोन करता है ओ जी ये डिस्कशन चल रही है तो हमें पता है की हो रहा है ठीक है हाँ जी तो ये न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो है ये जो आपको पता ही है कि कैपिटल हिल पे जो जनवरी 6 में जो हमला करवाया गया था या हुआ था जो भी था जिसके के अंदर जो प्रोब कर रही है अब जो बैठ के पार्लियामेंट इनकी अमेरिका में कि भाई इसके अंदर जो है ट्रंप साहब का क्या हाथ है तो उसके अंदर अब डिफरेंट लोगों को वो बुला रहे हैं उनकी टेस्टिमनीज ले रहे हैं अच्छा न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक आज जो है यहां पे जो 6th हियरिंग आज चल रही थी इसमें कैसिडी हचिनसन को बुलाया गया है जो कि टॉप एड थी ट्रंप साहब की व्हाइट हाउस में चीफ ऑफ स्टाफ मार्क मेडोज की तो इनसे उन्होंने पूछा जी कि क्या हुआ तो इन्होंने आज आके कहा है जी कि ट्रंप साहब ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनके सपोर्टर्स जो हैं ये दंगे कर रहे हैं बल्कि वो कहते हैं जी कि वो जो वहां पर बैठा हुआ था इनका वो जो ड्राइवर था تو وہ ڈرائیور جو تھا اس سے یہ گاڑی کھینچنا چاہتے تھے, اس کا ویل کھینچنا چاہتے تھے اور کہتے تھے ہٹو تم پیچھے, میں خود ڈرائیو کر کے وہاں پہ جاؤں گا. تو وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ جو سیکرٹ سروس کے لوگ تھے, اسپیشلی جو ہیڈ آف ٹرمپ کے سیکیورٹی ڈیٹیل تھی رابرٹ این جیل, انہوں نے کہا جی کہ آپ یہ نہ کریں ٹرمپ صاحب, یہ غلط طریقہ ہے, آپ کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے, کیونکہ وہ اتنے یعنی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا مچھرے ہوئے نو لوگ, کہ وہ آپ کو بھی اس میں نقصان ہو سکتا ہے, کیونکہ اس وقت ویسے بھی کانگریس بیٹھی ہوئی تھی بائیڈن صاحب کو بنانے کے لیے پریزیڈنٹ, اور وہ ساری وہاں پہ اندر ڈسکشن چل رہی تھی جب یہ باہر ہنگامے چل رہے تھے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ آپ یہاں پہ نہ جائیں. تو آج انہوں نے جی یہ سارے خلاصے کیے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ بجائے اس کے کہ یہ ان کی بات مانتے, اور انہوں نے کہا جی کہ میں یہ بڑا غلط کر رہے ہیں یہ لوگ, یہ جو یہ میٹل ڈیٹیکٹر سے ساروں کو دیکھ دیکھ کے اندر جانے دے رہے ہیں, یہ کون ہوتے ہیں ان لوگوں کو روکنے والے, میں ان کو جا کے منع کروں گا کہ مت کرو, سب کو اندر جانے دو. تو یہ جناب آج انہوں نے اپنی اس کے اندر بولا ہے,
پسند نہیں آئی, انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ان کو قطعی طور پر یہ بات پسند نہیں آئی, ہی ہیز فیو گڈ ورڈز ٹو سے
اباؤٹ ہر. یس, تو وہ ورڈز ہم یہاں پہ نہیں بتائے سکتے جو ٹریم صاحب نے کہا ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ڈیموکریٹ جیتا ہے بائیڈن ڈیش ڈیش ڈیش, اور یہ جو لڑکی نے کہا ہے یہ ڈیش 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 ہے جی. تو وہ ٹویٹ آپ خود پڑھیں, ٹویٹ کا ذمہ ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کانگریس جو ہے اس نے آج بی جے پی کو بڑا سلام کیا ہے, کیونکہ ہوا یہ ہے کہ سنڈے کے دن وہاں پہ بائی پولز چل رہے تھے تریپورا کے ایریے میں, اور تریپورا کے ایریے میں پتا چلا کہ بڑا جی جلاؤ مار گراؤ اور یہ سارا کچھ وہاں پہ چلتا رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جی وہاں پہ جو سیٹیں تھیں, چار سیٹیں تھیں, چار میں سے بی جے پی نے تین جیتی, ایک کانگریس نے جیتی, اور اس کے بعد جو ہے یہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا, مارکسسٹ اور سی پی آئی ایم نے کہا کہ یہ جو مسکرینٹس تھے, نام نہیں لیا انہوں نے, انہوں نے کہا جی انہوں نے ہمارے پہ ہم کو مارا پیٹا, اور کانگریس نے کہا کہ ہمارے 20 لوگ جو تھے تریپورا کے جو آفس کے اندر, انکلوڈنگ ہمارے جو چیف ہیں وہاں پہ برجیت سنہا, ان کے اوپر حملے کیے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے الیجڈلی انہوں نے کہا ہے کہ بی جے پی کے گونز جو تھے انہوں نے جو ہے حملے کیے ہیں اور انہوں نے مارا ہے. یہ جو چار سیٹیں تھیں تریپورا کی بائی الیکشنز کی, اس میں تین بی جے پی اور ایک کانگریس نے جیتی تھی, تو اس کے اوپر شاید وہ کہتے ہیں جی کہ دونوں پارٹیوں کے بیچ میں ہتا پائی ہوئی. انہوں نے کہا جی 20 لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں کانگریس نے, جبکہ پولیس کہتی ہے کہ نہیں 3 ہی زخمی ہوئے تھے. بہرحال جی ایک جوڈیشل کمیشن اس کے اوپر بٹھانے کے لیے جو ہے کانگریس نے کہا, اور انہوں نے کہا جی اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. کل ہم نے آپ کو محمد زبیر جو انڈین جرنلسٹ ہیں اس کے بارے میں بتایا تھا کہ ملک کے اندر اور ملک کے باہر بھی بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اب اس چیز کے خلاف ہیں کہ بی جے پی کی گورنمنٹ جو فریڈم آف ایکسپریشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ بالکل غلط ہے, اس کو نہیں کرنا چاہیے. تو آج یہ بات اتنی گرم ہو گئی ہے کہ جو یونائیٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل ہیں گترس صاحب, ان تک یہ بات پہنچ گئی ہے, انتونیو گترس, اور ان کے جو سپوکس پرسن ہیں سٹیفن جوریک, انہوں نے آج کہا ہے کہ بھئی یہ بالکل غلط ہو رہا ہے, اور ہر بندے کو ہر کنٹری کے اندر وداؤٹ اینی تھریٹ اینڈ ہراسمنٹ اپنی بات فریلی کہنے کی آزادی ہونی چاہیے. اینڈ آل دا مور بیکاز یہ جو محمد زبیر ہے یہ انڈین نیشنل ہے, اس کو پکڑا ہے پچھلے دنوں میں 2018 کی اس نے ایک ٹویٹ کی تھی جس کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے جو ہے ریلیجس جو سینٹیمنٹس ہیں لوگوں کے وہ ہرٹ کیے ہیں. تو آج یونائیٹڈ نیشنز کے اندر جب یہ کوسچن پیریڈ چل رہا تھا تو اس کے اندر انہوں نے سٹیفن جوریک نے کہا ہے کہ آن بہاف آف یہ جو یونائیٹڈ نیشنز کے چیف ہیں انٹونیو گوٹرس کے, جناب یہ ایسے اگر آپ جرنلسٹوں کو جیسے کہ محمد زبیر ہیں جو کہ کو فاؤنڈر ہیں آلٹ نیوز کے, ان کی اگر آپ آواز دبانے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے آزادی کیسے رہے گی جرنلزم کے اندر. تو اس کے لیے جو ہے وہ, اور اس کے علاوہ آپ کو پتا ہی ہے میریا ریسا جو کہ نوبل پرائز وننگ جرنلسٹ ہیں فلپین سے بھی, انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے دنوں میں جو انڈیا کے اندر ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ اس کو بھی پکڑ کے ڈیٹین کیا ہے, اور اب یہ جو محمد زبیر کو کیا ہے, تو اٹ از ریئلی ریئلی ویری شاکنگ کیپنگ ان ویو دیٹ انڈیا از اے ڈیموکریٹک کنٹری. تو اس کے اوپر جی آج پھر اور بھی جو ہے بہت زیادہ ریئیکشن, یعنی سوچیں کہ کل تو میڈیا آرگنائزیشنز کر رہی تھیں, آج یونائیٹڈ نیشنز کے آفس سے جو ہے وہ بھی اس طرح کی بات آ رہی ہے. دا پرنٹ کی یہ سٹوری ہے جی, اینڈ دس سٹوری از ریٹن بائی ابھیشیک ڈے, اور اس کا جو ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ ٹف پولیس آفیسر جو ہے وہ اس کے اوپر ہے, ٹف پولیس آفیسر ٹرنز اب جو بھی ہے جی. تو وہ تو یہ کس کے اوپر سٹوری ہے آج, یہ پرنٹ کی یہ آج سٹوری جو ہے جناب یہ سمرنجیت سنگھ مان کے بارے میں ہے, और सिमरनजीत सिंह मान की अगर आपको हिस्ट्री पंजाब के अंदर पता होए कि ये इस वक्त तो इनकी उम्र वैसे 77 है, लेकिन ये इनको समझा जाता है कि ये बड़े रेडिकल सिख लीडर हैं। हालांकि एज पुलिस ऑफिसर इन्होंने ये जो स्मगलिंग चलती थी उस पंजाब के अंदर उसको बड़ा खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन अब रिसेंटली बहुत अरसा क्वाइट रहने के बाद जो है ये अब एक बाय इलेक्शन जो है वो जीते हैं और लोकसभा के एमपी बन गए हैं ये। और वो कहते हैं जी कि इनको कभी जो है रोक दिया गया था करने के लिए किरपान पार्लियामेंट में ले जाने से, और इन्होंने जिस वक्त ये हुआ था ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो इन्होंने उस वक्त रिजाइन 1984 में कर दिया था और अपना एक स्प्लिंटर ग्रुप शिरोमणि अकाली दल अमृतसर बना लिया था, जो कि अलहदा हो गया था शिरोमणि अकाली दल जो कि बादल फैमिली चलाती है उससे हटा लिया था। लेकिन ये अब संगरूर में जीत गए हैं लोकसभा की सीट विद अ ह्यूज मार्जिन। तो वो कहते हैं जी कि अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि मिलिटेंसी फिर से पंजाब में आने वाली है, क्योंकि खास तौर पे जबकि आपकी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल फेल हो गई है और लोगों में आपके खिलाफ बड़ा रिएक्शन है स्पेशली आफ्टर द डेथ ऑफ सिद्धू मूसेवाला। तो ये अब पंजाब में क्या चल रहा है, क्योंकि हुआ ये था कि उस वक्त ये कमांडर थे जब ये हुआ था गोल्डन टेंपल का ये जो सारा मामला हुआ था जिसमें कि इंडियन आर्मी गई थी और जो अंदर बैठे हुए थे सो कॉल्ड जो वो अलेज रेबल्स उनको फिर निकाला था और इन्होंने मारा था, तो उस वक्त इन्होंने कर दिया था रिजाइन। और ना सिर्फ रिजाइन किया था बल्कि इन्होंने इंडियन आर्मी को जो जनरल डायर है उससे इन्होंने खिताब दिया था कि इंडियन आर्मी ने जनरल डायर की तरह जो 1999 में जलियांवाला बाग का जो मैसेकर किया है वही इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेंपल के अंदर किया है। तो ये उनके बयान आए थे और वो कहते हैं जी कि ये 1984 से 1989 के बीच में जेल में भी रहे हैं क्योंकि अलेजली इनका नाम जो है इंदिरा गांधी जी के असैसिनेशन के अंदर भी आया था। तो अब इनकी जो जीत हुई है संगरूर में उसका क्या मतलब है कि खालिस्तान का मुद्दा क्या फिर से सर उठा सकता है पंजाब में, क्योंकि पंजाब ने इसकी काफी जो है वो कीमत भी उठाई हुई है, क्योंकि वो कहते हैं आज भी सिमरनजीत सिंह जो मान है वो जिस वक्त 6 जून आता है तो वो गोल्डन टेंपल के बाहर जाते हैं और खालिस्तान के नारे लगाते हैं। और आज जो इनकी जीत हुई है उसमें भी जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वो कहते उन्होंने कहा है कि ये विक्ट्री मेरी नहीं है, ये जरनैल सिंह भिंडरावाले की विक्ट्री है और जरनैल सिंह भिंडरावाला ही वो बंदा था जिसके के अगेंस्ट जो था ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था जो कि बंदों को लेकर अंदर उसमें बैठा था टेंपल में। तो ये अब बड़े खतरे की घंटी जो है फेर से उठे बज गई है। राजस्थान के जो डीजीपी हैं जी जो इंडिया का राजस्थान है जिसके अंदर हमने आपको कल बताया था कि उदयपुर में काफी वो वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो टेलर की भी हेडिंग हुई है, राजस्थान के डीजीपी मोहन लाल लाथर ने आज कहा है कि ये जिन दो लोगों ने इस टेलर को जो है वो मारा है उनमें से एक का ताल्लुक जिसका के नाम मोहम्मद गौस वो बताते हैं, वो कहते हैं जी उसका ताल्लुक पाकिस्तान की टेररिस्ट आउटफिट दावत इस्लामी के साथ है। और ना सिर्फ ये बल्कि इस बंदे ने पाकिस्तान के चक्कर भी लगाए थे और हमें ये पता चला है कि ये उनके साथ इन टच भी है और वहां जाता भी है। अच्छा जाहिर है अब ये जब बयान आया है तो इसके ऊपर पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने बहुत ज्यादा रिएक्शन शो किया है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस ने कि ये कैटेगोरिकली इंडियन क्लेम हम रिजेक्ट करते हैं, इंतहाई ये मिस्चिवियस इनका है कि इंडियन नेशनल्स हैं ये सारे उनको आप पाकिस्तान के साथ लिंक कर रहे हैं और ये टिपिकल है बीजेपी आरएसएस की हिंदुत्व ड्रिवन इंडियन रिजीम का कि वो पाकिस्तान को मिलाइन करते हैं, अपने इंटरनल मामलात संभाल नहीं सकते हैं और पाकिस्तान की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। तो ये अब इनकी जो ये हरकतें हैं ना तो इससे वो अपने लोगों को मिसलीड कर सकते हैं ना लोगों को बाहर मिसलीड कर सकते हैं, पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है ये जो बीहेडिंग हुई है उदयपुर के अंदर। नेशनल असेंबली जो है जी पाकिस्तान में उसने आज फाइनेंस बिल 2022 को आज कर दिया है पूरा और वो तमाम शर्तें जो कि आईएमएफ ने रखी थी उन तमाम शर्तों को मान लिया है ताकि हमारा $6 बिलियन का जो लोन है उसको रिवाइव किया जा सके। नेशनल असेंबली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ साहब जो थे वो اس سیشن کو چیئر کر رہے تھے اور آئی ایم ایف نے کہا تھا کہ جس وقت تک آپ جو ہیں پیٹرولیم کے اوپر لیویز $50 پر لیٹر کی نہیں کریں گے اپلائے اس وقت تک یہ آپ کے منظور نہیں قرضے کیے جائیں گے. تو انہوں نے مفتا اسماعیل صاحب نے کہا جی کہ اب ہم دیکھیں گے, حالانکہ پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو $50 کی لیوی ہے یہ ہم امپوز نہیں کرنا چاہتے ہیں, تو اب دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. اینڈ جناب وہی جو ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جتھے دی کھوتی اتھے آڑ کھلوتی ہے جی. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ انتہائی بری ہے, انتہائی خراب ہے, ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کرنا تھا, ملک کا نام خراب کیا, بہت خراب کیا اور ملک کے فائدے کے لیے کوئی کام نہیں کیے. اچھا جی رشیا بھی گئی تھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ, کوئی انہوں نے کچھ بھی ان سے بات چیت نہیں کی, ایسے ہی منہ اٹھا کے گئے اور منہ اٹھا کے آ گئے. اوکے ٹوڈے دیر واز اے ویری فنی انٹرویو دیٹ واز گوئنگ آن ٹوڈے آن پاکستان کے ایک ٹی وی شو کے اندر, ہمارے جو منسٹر آف اسٹیٹ فار پیٹرولیم ہیں مصدق ملک صاحب. مصدق ملک صاحب ٹی وی کے اوپر ایک انٹرویو دے رہے تھے اور اس کے اندر انہوں نے بولا ہے جی ہم اب چیپ آئل کے لیے, کیونکہ بے تحاشا کرائسس بڑھ گیا آئل کا پاکستان میں, تو ہم رشیا کی طرف دیکھ سکتے ہیں. دیکھیں گے, مانگنا نہیں ہے ان سے, ہم دیکھ سکتے ہیں. اور اس بیان کی تو ماجد بھائی آپ ذرا مجھے نا یہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں ذرا سمجھائیں گے, کیونکہ میری عقل جو ہے نا خراب ہوتی جا رہی ہے نا, مجھے میں بالکل بوڑھی ہوتی جا رہی ہوں, مجھے نہیں سمجھ آئی اس کا کیا مقصد ہے. پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈڈ ناٹ ہیو اینی آفیشیل اگریمنٹ ود رشین گورنمنٹ فار چیپ آئل, آل دو دے روٹ اے لیٹر فار چیپ آئل. اس کا کیا مطلب ہے مجھے سمجھ نہیں آئی.
ایسی پیار محبت کا لیٹر لکھ دیا تھا.
اچھا کہ پوٹن صاحب آپ سے بہت پیار ہے,
ہاں جی
آپ سے بڑی محبت ہے, آپ اپنی شرٹ اتار کے پاکستان میں آ کے فشنگ کرو ہے. اس لیٹر میں یہ لکھا تھا,
ہاں مگر اس پہ کوئی تیل ویل کی بات نہیں تھی.
اچھا 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 تو وہ لیٹر ایسے ہی لکھا تھا,
ایسے ایم ہی لکھا تھا.
اچھا ایم ہی لکھا, اچھا یہ مطلب ہے اس کا. تھینک یو ویری مچ بھائی, میری زندگی خراب ہو جاتی ہے اگر میں آپ کے ساتھ نہ ہوتی ہے نا,
بس ایم ہی ایم ہی.
ہاں شکر ہے میں آپ کے ساتھ کام کر رہی ہوں,
دفعہ ایم ہی لیٹر بھی جانا
چاہیے, لیٹر جانا چاہیے. اچھا مجھے, اچھا
ہر چیز بڑا سیریس نہیں لینا چاہیے,
سیریس نہیں لینا چاہیے, جو مجھے سمجھ آ گئی ہے بھائی. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم سو انڈیپٹڈ ٹو یو.
ایگزیکٹلی
ٹھیک ہے, اوکے تھینک یو. تو انہوں نے کہا جی مفتا سوری یہ جو ہے مصدق ملک صاحب, انہوں نے کہا جی کوئی پچھلی گورنمنٹ نے کوئی اگریمنٹ نہیں کیے تھے, بس ایک لیٹر لکھا تھا رشین گورنمنٹ کو. اچھا جی اس رشین لیٹر میں اس کو جو لکھا تھا کیا تھا, کہ تمہاری عورتیں بڑی حسین ہیں, ہمیں بڑا پیار ہے ان سے, بھی کیا لکھا تھا اس کے اندر وہ بتاؤ تو صحیح. ٹھیک ہے اچھا جی, یہ ایک کمپنی ہے ریفینیٹو ڈیٹا جو ہے وہ شو کر رہی ہے کہ پاکستان کے اندر فیول جو ہے وہ 4-year high ریکارڈ ہائی بلکہ جو ہے وہ ٹچ کر رہا ہے, اینڈ اٹ نیڈس 700,000 tons پر منتھ. تو اس نیڈ کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کو چیپ آئل کی ضرورت ہوئے گی, اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ مصدق ملک صاحب کا انٹرویو تھا.
تو دیکھ رہے ہیں نا,
ہاں دیکھ رہے ہیں, کہتے ہیں ہم رشیا کی طرف دیکھ سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں بس ویسے ہی دیکھ سکتے ہیں پیار سے.
ہاں تکڑا سے بنا دی نا,
ہاں لڑکیاں بڑی حسین ہیں نا,
میں اونلی تک رہا ہوں,
ہاں میں تک رہا ہوں, اوکے اور میں کچھ نہیں کرنا, ہلنا جلنا نہیں. اچھا اچھا جی, پی ایم ایل این جو ہے انہوں نے آج ایک انٹرا کورٹ اپیل دائر کی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آپ نے نوٹیفائی کیا تھا ای سی پی نے, کہ یہ جو ان کو پنجاب اسمبلی میں جو حمزہ شریف کو صاحب کو جو چیف منسٹر بنایا گیا ہے, تو اس کے لیے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ڈی تھرون آپ کریں, یعنی کہ ظاہر ہے ڈی سیٹ کریں, کیونکہ یہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ جو لوگ اپنی پارٹی چھوڑ دیتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں. پی ایم ایل این کا کہنا ہے کہ یہ اگینسٹ دا لا ہے, خاص طور پہ جو آپ رول لے کر آئے ہیں ریزروڈ سیٹس کے اوپر, جس کا کہ کل ہم نے آپ کو سارا قصہ سنایا ہے, 5 reserved سیٹس ہیں جو 3 عورتوں کے لیے اور 2 مردوں کے لیے, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے کہا یہ اگینسٹ لا ہے, تو اس کو آپ دیکھیں. میٹنگ ہوئی ہے جی ایک سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی, اور اس کے اندر آج بڑے سیریس قسم کے جو ایلیگیشنز جو پہلی ہیومن رائٹس جو یعنی فارمر جو ہیومن رائٹس منسٹر تھیں شری مزاری صاحب, انہوں نے ایک وہ کہا تھا کہ ہم نے بل پاس کر کے سینٹ میں بھیج دیا تھا مسنگ لوگوں کا کہ ان کے اوپر پروب بٹائی جائے. شری مزاری نے اس وقت کہا تھا کہ کچھ انویزیبل شیڈوز نے اس بل میں سے کچھ کلوزز غائب کر دیے تھے اور اب تو وہ بل ہی غائب ہو گیا ہے. تو آج جس وقت یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیشن کمیٹی کی میٹنگ ہو رہی تھی, تو اس میں آج پھر یہ آیا کہ وہ جو مسنگ پیپل پہ جو لا پاس کیا گیا ہے وہ بل کی کاپی کدھر ہے, تو وہ بل کی کاپی پاکستان میں نہیں مل رہی, وہ گم ہو چکی ہے. ابھی فیاض بھائی آئیں گے پوچھیں گے ذرا ان سے کہ وہ کدھر ہے, ان کے پاس اندر کی سٹوریاں ہوتی ہیں نا, وہ شاید ہمیں بتائیں گے کہ وہ ویزیبل, ایک تو انویزیبل شیڈوز کون ہیں ہیں جی, اور وہ بل کہاں گیا, یعنی آپ دیکھو ماجد بھائی بل ہی غائب ہو گیا, یعنی کہ رستے میں تھا
اور گم گیا نا.
ہاں وہ سینٹ کے رستے میں تھا نا, نیشنل اسمبلی سے سینٹ جا رہا تھا, بیچ میں گم ہو گیا, وہ گم ہو گیا. ٹھیک ہے, انفارمیشن منسٹر جو پرانی گورنمنٹ میں تھے پی ٹی آئی کی, فواد چودھری صاحب, آج وہ شیریں مزاری صاحبہ اور اسد عمر کے ساتھ جو ہیں وہ ایک اور اپنے دوسرے پی ٹی آئی کے ممبرز کے ساتھ ایک کر رہے تھے پریس کانفرنس جو ہے پارلیمنٹ کے باہر, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو عوامی بلوچستان عوامی پارٹی کے اور فہمیدہ مرزا اور اسلم بھوٹانی اور جو ہیں خالد مکسی, ان سب نے کہا ہے کہ جو نیا ڈیولپمنٹ بجٹ بنایا گیا ہے اس کے اندر بلوچستان کو کچھ بھی ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے نہیں مل رہے ہیں, جو کہ ہفتہ پہلے اس نے فیاض بھائی نے آلریڈی یہ خبر بریک کر دی تھی. تو آج انہوں نے کہا جی کہ مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ جو بجٹس ہیں یہ جو ان لوگوں کو دینے تھے یہ کیوں نہیں دیے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو نیشنل اسمبلی کے سپیکر ہیں نہ وہ بائسڈ ہیں, بائسڈ فیصلے بناتے ہیں کیونکہ وہ کسی کی بات ہی نہیں سنتے ہیں اور وہ کسی بات کا جواب لینے دیتے ہی نہیں ہے نہ سوال کرنے دیتے ہیں.
صحیح ہو گیا.
تو اس لیے اگر لوگوں کو ڈیولپمنٹ فنڈز نہیں ملیں گے تو ان کے علاقوں میں ڈیولپمنٹ کیسے ہوئے گی, جو کہ یہ فیاض بھائی نے لاسٹ ویک کہا تھا کہ بھوٹانی صاحب نے اور انہوں نے خالد مکسی نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمیں کم از کم فنڈ ملتے تھے, عزت نہیں تھی ملتی ہے. تو اب نہ عزت مل رہی ہے نہ فنڈ مل رہے ہیں. تو آج فواد چودھری صاحب نے کہا بھائی وہ فنڈ کہاں ہیں, کیوں نہیں مل رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے جی, یہ لاہور ہائی کورٹ نے آج کہا ہے جی کہ یہ جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر چودھری پرویز الہی وغیرہ نے یہ جو ساری ڈالی ہے لاہور ہائی کورٹ کے اگینسٹ حمزہ کیا جو چیف منسٹر بنایا گیا ہے, اس کے اوپر اب غور کیا جائے گا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کو ملے تھے 197 ووٹس جبکہ ان کو چاہیے تھے 186, لیکن اس کے اندر پی ٹی آئی کے 25 ڈسیڈنٹ ایم پیز بھی تھے. اور اب جو وہ کل بھی جو ساری بات آئی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہم نے کی ہے جو ریزرو سیٹس کی تھی. تو اب ادھر کہا گیا ہے کہ جی ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ جو ہے یہ انٹرپریٹ آرٹیکل 63A کی پراپرلی کرتی ہے کہ نہیں کرتی ہے. چودھری پرویز الہی نے کہا جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں کہ یہ جو ہے یہ اگینسٹ دا لا ہے اور اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. فیڈرل ہیلتھ منسٹر جو قادر پاٹل صاحب ہیں وہ اب کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر کے جو بچے ہیں 5 سے 11 سال کے ان کو اب فوراً ہم جو ہے ویکسینیشن شروع کریں گے. اس بریکٹ کے لیے ہم نے فائزر سے ریکویسٹ کی ہے, فائزر کی جو ویکسینز ہیں ہمیں اگست سپٹمبر تک پہنچ جائیں گی, کیونکہ جو نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر ہے اسلام آباد میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیسز پھر سے بہت زیادہ اوپر جانے شروع ہو گئے ہیں. تو اس لیے عید اور جو محرم آ رہا ہے اس کے اندر جو ہیں آپ تمام ایس او پیز کو فالو کریں, جیسے کہ ماسک لگائیں اور سوشل ڈسٹینسنگ کریں اور پراپر سینیٹیشن کریں. پی ٹی آئی وچ از پریس ٹرسٹ آف انڈیا, اس کے مطابق سورا بھاسکر جو ہیں ایکٹریس بالی ووڈ کی, انہوں نے کہا جی مجھے تھریٹننگ جو ہیں وہ آ رہے ہیں, لیٹرز آ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو ایکٹیوسٹ تھے ونائک دمودر اس کے خلاف بات کی تھی. تو انہوں نے لوگوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی بات نہیں سن سکتے ہیں. کرن جوہر جو ہیں جن کے بارے میں ہم نے آپ کو کل بتایا ہے کہ 7th سیزن آف کافی ود کرن شروع کرنے والے ہیں, تو اپنے ایک اس نے کلپ جو ہے پچھلا ریوائز کیا ہے جس کے اندر 2007 میں انہوں نے اکشے کھنہ کو بلایا تھا, تو اس میں یہ سنتے ہوئے کہتے ہوئے سنائی دے رہے ہیں کہ تم میرے ساتھ بڑے روڈ تھے, ہم بیڈمنٹن کھیلنے جاتے تھے, میں بہت بڑا برا پلیئر تھا, تم اچھے تھے, لیکن تم مجھے کہتے تھے یو آف دا کورٹ آف دا کورٹ, حالانکہ ہم سارے ساؤتھ ممبئی میں اکٹھے رہتے تھے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ دیکھ کے ہنس رہے ہیں. اینڈ جناب ایڈیل, Adele looks like a diva. She looks like a diva. She was at the wedding of Cleveland Cavaliers کے جو star ہیں Kevin Love and model Kate Brock کے, اور یہ دیکھیں پہلے کیسی تھی اور اب کیسی لگ رہی ہے. تو یہ وہاں پہ تھی, تو people have absolutely gone crazy on her pictures that have appeared. ٹیسٹ جو اوپنر ہیں 22 سال کے عبداللہ شفیق وہ بڑے خوش ہو گئے ہیں کیونکہ ان کی تعریف کی ہے بابر اعظم نے بہت بڑے لفظوں میں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو عبداللہ شفیق ہے یہ جو لیجنڈری انڈین کرکٹر تھے راہل ڈراوڈ اور نیوزی لینڈ کے کیپٹن کین ولیم سن جیسا ان کا ٹیلنٹ ہے. جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ جب آسٹریلیا آئی تھی وزٹ پہ پاکستان میں تو انہوں نے پہلے ٹیسٹ میں 100, دوسرے میں 96 اور تیسرے میں جو کراچی میں تھا اور تیسرا جو لاہور میں تھا اس میں 81 بنائے تھے. تو بابر صاحب نے کہا, بابر اعظم نے, کہ میں اس کی ٹیکنیک کا بڑا فین ہوں. تو عبداللہ نے کہا وہ میری ٹیم کے فین ہیں لیکن میں تو آئیڈلائز کرتا ہوں رکی پونٹنگ اور پاکستان کے جو بیٹر ہیں اور ابھی جو ان کے کوچ بھی ہیں محمد یوسف ان کو اس کے علاوہ. اور جناب پاکستان کے اندر 1400 کلائمرز آ گئے ہیں, انٹرنیشنل کلائمرز. یہ جو پاکستان کی بڑی بڑی چوٹیاں ہیں ان کو سر کرنے کے لیے جو کرر حیدر صاحب ہیں سیکرٹری آف الپائن کلب آف پاکستان, انہوں نے کہا کہ ایٹ لیسٹ 370 ہیو آلریڈی reach the base camp aur aage bhi wo jayenge jo log yahan pe aaye hue hain climbers they have come from Saudi Arabia Japan Russia Norway Italy Bangladesh Iran USA and they will climb K2 Broad Peak Nanga Parbat Gashar Brahm 1 and 2 Trango Towers aur is tarah ki sari janab ye badi badi karenge और पीसीबी के रमीज राजा ने चेयरमैन जो है उन्होंने कहा है जी कि जनाब ये जो मीडिया है ये इंतहाई बदनीति के ऊपर जो है बातें कर रहा है मुझे कोई नहीं हटा रहा मैं नहीं हट रहा लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं हट जाऊं क्योंकि आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइन बनेगी तो ऐसा नहीं होएगा एंड एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज बाबर आजम येट ब्रेक्स अनदर रिकॉर्ड आईसीसी की T20 की टॉप लिस्ट पे अब ये पहुंच गए हैं एंड ही इज देयर फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड He has there as of June 29 for 1030 days on top और ये कोहली का पहले रिकॉर्ड था जो उन्होंने तोड़ा है कोहली जो है 1013 डेज रहे थे वहां पे टॉप के अंदर और बाबर जो है इस वक्त व्हाइट बॉल क्रिकेट की रैंकिंग में सबसे ऊपर है और वो कहते हैं जी कि मैं टेस्ट क्रिकेट में भी सबसे ऊपर जाना चाहता हूं
एंड जी
ये हमारी खबर है
दिस न्यूज इज ओनली फॉर शाजिया जी नीले जेज को कहती है ना ये ब्लू जेज उन्होंने बॉस्टन को फिर हरा दिया
हाय हुई यस
6-5 पे लास्ट इनिंग में अ सेंसेशनल
6-5 और 7-5 मजद भाई
6-5
अच्छा 6-5 ओह वाओ
6-5 6-5 से हरा दिया उन्होंने जी
ओ जी वाह जी वाह
दैट्स ओके 6-5 वो 7-5 वो 9-5 वो
25 वो हराया सही है
हरा दिया जी आज उनका तीसरा और आखिरी गेम है एंड 8 बजे तक तो हम आपके साथ यहां पर हैं तो हम आपको बताते रहेंगे अपडेट देते रहेंगे एनीवे
अभी थोड़ी देर में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे
फयाज बिलाना हमारे साथ होंगे मैं दो स्पॉन्सर्स के पैगाम लेता हूं इन द मीन टाइम आई विल डायल फयाज बिलाना साहब और उनसे तो वी ओनली हैव 20 मिनट्स सो 20 मिनट्स में आपने जितने भी सवाल करने हैं और हम फयाज बिलाना से भी कहेंगे कि भाई जरा जवाब जो है ना
फैटे फैट दो
छोटे छोटे रखो ओके कुछ स्पॉन्सर्स के पैगाम विल बी राइट बैक 4166201778 हमारा फोन नंबर है
पंजाब टीवी पेश करते ने कनाडा डे मेला 2022 जिस विच आ रहे ने नछत्तर किल जस बाजवा सिंगा रुपिंदर हांडा हर्फ चीमा लवली निर्माण परवीन पाटा सत्कार संधु खान साहब द लैंडर्स अते विरासत संधु पहली जुलाई नु 150 क्वीन स्ट्रीट बोल्टन विखे कनाडा डे मेला री एंट्री फ्री पार्किंग आओ ते आनंद माणो जानकारी ले कॉल करो 4163121111 कनाडा डे मेला पहली जुलाई नू
नागहानी और परेशानी से बचना सिर्फ उसी वक्त मुमकिन है जब आप घर के तमाम कमरे और सोने के तमाम इलाकों से बाहर घर के हर लेवल पर वर्किंग स्मोक अलार्म्स हों। आज और हर महीने घर के तमाम स्मोक अलार्म्स यानी धुएं के अलार्म्स की जांच करें अलार्म्स पर लगे बटन को दबाकर चेक करें कि बीप आ रही है कि नहीं वो काम कर रहा है कि नहीं आपकी एहतियात और स्मोक अलार्म्स जान बचाते हैं सिटी ऑफ ब्रैम्पटन की तरफ से एक पैगाम
जी साहब वेलकम बैक अगेन एंड जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि फयाज बिलाना साहब मेरे साथ होंगे तो लीजिए साहब हमारे साथ फयाज बिलाना साहब आ गए हैं लाइन पर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर कैसे हैं आप
बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलाम वालेकुम आपके तमाम प्रोग्राम देखने और सुनने वालों को भी मेरी तरफ से
शाजा भी बैठी उनको भी करना है
हेलो
जी अस्सलाम वालेकुम मैंने कहा कि आज खामोशी है बड़ी स्टूडियो में आपका वो तूफान जो है प्रॉपर कोई मुझे कुछ इतना अलामत नहीं नजर आई मैंने कहा इतनी खामोशी
नहीं नहीं हमने कहा आपके आने से पहले ये आप जैसे बड़े तूफान के आने से पहले वो कहते हैं ना साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म तो ये बड़े स्टॉर्म के आने से पहले साइलेंस थी अच्छा जी फयान आज तो बड़ी वहां पे फुलझड़ियां हुई हैं वो जो आपने हफ्ता पहले हमें खबर बताई थी भूटानी साहब थे मक्सी साहब वो आज फवाद चौधरी साहब सामने लेकर आए हैं खबरें तो ये क्या चल रहा है और फिर दूसरी खबर ये है कि वो जी मिसिंग जो पर्सन्स पे जो बिल था वो गैप हो गया है जो जा रहा था सेनेट के रास्ते से तो ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में जरा बताओ आप
मेरे ख्याल में हम पाकिस्तान जाने से पहले कनाडा की बात ना कर लें
अच्छा जी ठीक है बताएं
क्योंकि कनाडा में लोगों ने हमने भी डिस्कस कर लिया और लोगों ने भी देख लिया कि जो हमारे कैलगरी से मेंबर पार्लियामेंट से टॉम कोमिच उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ जो की हाउस ऑफ कॉमन्स में और जवाब में फिर ख्वाजा आसिफ साहब हमारे जो वजीर दफा हैं उन्होंने जो की टॉम कॉमेज के साथ, और उन्होंने कनाडा को भी उसमें अपनी स्पीच में रगड़ दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों पे भी उन्होंने इल्जाम लगा दिए, इमरान खान पे भी लगा दिए कि इसने ओवरसीज पाकिस्तानियों में डिस्ट्रीब्यूट उनको जो है डिवाइड कर दिया है, लेकिन अंदर की खबर तो नहीं ना किसी ने अभी तक आपको बताई।
नहीं
मैं बताता हूँ,
लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था कि 10 दिन के बाद जाग गए खाजा आसिफ साहब।
मैं आपको
अंदर की क्या खबरें बताएं?
मैं आपको अंदर की खबर बताता हूँ।
हाँ जी, हाँ जी।
कि जनाब जब टॉम कॉमेज साहब ने किया और उसके बाद खाजा आसिफ साहब ने मामले को उठाया, तो उसके बाद हमारे पिंडी वाले जो साहबान थे कमर जवेद बाजवा साहब और उनकी टीम, वो भी मुतहरक हो गए।
अच्छा।
और इतने मुतहरक हुए कि उस रात एक चार्टर्ड फ्लाइट आनी थी अफगानियों की कनाडा इस्लामाबाद से।
अच्छा।
और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे वो पहुंच चुके थे अफगानी। आई विल टेल यू एग्जैक्ट के टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने थे, 249 प्लस
49 कितने हुए, यानी
एक मिनट 249 प्लस 76 वन मिनट, मैं आपको एग्जैक्ट नंबर दे दूं कि कितने बंदे थे। हाँ
अच्छा।
उसमें से उन्होंने जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुके, और ये रूटीन में कोई अब तक 12 चार्टर्ड त्यारे इस्लामाबाद से कनाडा पहुंच चुके हैं, जो अफगान अफगानी जो अफगानिस्तान से आ रहे हैं उनको कैनेडियन हाई कमीशन जो इस्लामाबाद में हमारी हाई कमिश्नर है विंडी गिलमोर, वो और यूएन का एक इदारा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन, वो मिलके वजारत दाखिला से अप्रूवल लेके, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अप्रूवल लेके उनके तमाम प्रोसेसिंग होती है। इस्लामाबाद के 3 होटल बुक हैं, वहां वो अफगानी ठहरते हैं, उनकी स्क्रीनिंग सारी उनकी होती है, पहले वैक्सीनेशन भी हो रही थी, अब वो नहीं हो रही, लेकिन बाकी उनका सारा कुछ होता है, पेपर बनते हैं, वीजे लगते हैं इस्लामाबाद में, और वो फिर चार्टर्ड त्यारा यहाँ आता है, पहले वैनकूवर आते रहे हैं, फिर कैलगरी आते रहे हैं, अब टोरंटो आ रहे हैं चार्टर्ड त्यारे। रात को 1:27 को आना था चार्टर्ड त्यारा, नहीं आया। 1:29 को अब आना है, आज वो भी नहीं आया। 27 वाले दिन ये तमाशा हुआ कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे अफगानी पहुंच चुके थे और ऊपर से ऑर्डर आया FIA वालों को कि रोको इनको। उन्होंने कहा सर हम कैसे रोकें, सारे ये वीजे लेके खड़े हैं। उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह भी है रोकें, इनके पेपरों में से कोई डिफेक्ट निकालें, क्या प्रॉब्लम क्या है, इनकी प्रॉब्लम निकालें। तो FIA वालों को तो फिर अल्लाह पूछे उनसे, उन्होंने तो डिफेक्ट निकाल सकते हैं वो पेपरों में से। उन्होंने कहा जी साइड पे हो जाए, इनमें ओवर स्टे कितने अफगानी हैं और कौन से यहाँ जो है जिनके वीजा परमिट एक्सपायर हुए हुए थे या जिन्होंने प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं की, और अगर एक्सपायर हुए हुए थे तो इन्होंने फाइन नहीं पे किया, क्योंकि आप पाकिस्तान में अगर ओवर स्टे कर जाते हैं तो आपको फाइन होता है। अगर आपके पास एग्जिट परमिट नहीं है, आप एग्जिट नहीं कर सकते, तो उनके पास तो बहुत सारे तरीके थे। जब उन्हें चेक किया गया तो उसमें से सिर्फ 60 लोग क्लियर होके जा सकते थे, FIA की लाइन क्रॉस कर सकते थे, बाकी 249 पीपल वर विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड दे वर कमिंग। अब वहां ये हुआ एयरपोर्ट पे, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे, वहां कैनेडियन हाई कमिश्नर पहुंचा हुआ, IUM वाले पहुंचे हुए, UN वाले पहुंचे हुए, इंसानी हकूक वाले सारे पहुंचे हुए। उन्होंने कहा जी कि ये क्या, पहले तो हम भेजते रहे हैं 12 जहाज हम भेज चुके हैं, और वहां तो उस वक्त तो आप कुछ नहीं हमें कहते थे, ना पूछते थे, किसी के पेपर देखते थे, जिनके एग्जिट परमिट नहीं थे उनको भी जाने देते थे, जो ओवर स्टे थे उनको भी जाने देते थे, जिनके पास कोई कुछ नहीं था, परमिशन ही नहीं थी पाकिस्तान में दाखिल होने की, जिन्होंने बस बॉर्डर क्रॉस कर ली और हमारे ऑफिस तक पहुंच गया इस्लामाबाद, हमने उनके पेपर बना के जहाज पे बिठा दिया, अब क्या है। उन्होंने कहा जी हमें ऊपर से ऑर्डर आया है, उन्होंने कहा जी ऊपर कहीं हमारी बात कराएं, उन्होंने कहा जी आप कर सकते हैं तो गाएं, ये नहीं जा सकते। ये सुबह के 4 बजे तक वहां झगड़ा होता रहा, शाम रात 9 बजे झगड़ा शुरू हुआ, सुबह 4 बजे तक ये झगड़ा चलता रहा और वो चार्टर त्यारा नहीं आ सका। और जो एयरलाइन थी वो एक पुर्तगाल की एयरलाइन है, हाई फ्लाई शायद उसका नाम है, उन्हें इस वक्त तक जो है वो $6 लाख उन पे फाइन पड़ गया। उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं, हाई फ्लाई एयरलाइन है पुर्तगाल की, $6 लाख एक के पड़े, और जो 29 को अब फ्लाइट आनी है 6 लाख उसके, $12 लाख कैनेडियन गवर्नमेंट को फाइन हो गया और अफगानियों को उन्होंने बसों में बिठा के वापस होटल में पहुंचा दिया। अब पाकिस्तान गवर्नमेंट कहती है कि ये जो अफगानी यहाँ आए हुए हैं ओवर स्टे हैं, इनका पहले फाइन पे करें, इनको परमिशन हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर से मिलेगी, उसके बाद आइंदा भी हम हर एक एक बंदे का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे और फिर जाने देंगे। अब उन्हें UN वालों को और कैनेडियन हाई कमीशन इस्लामाबाद को बात समझ लग गई है कि ऊपर से ऑर्डर आया है, तो हमारा जो पाकिस्तान के साथ जो कैनेडियन टॉम कॉमेज साहब ने स्पीच की है कमर जवेद बाजवा साहब के बारे में, और ये इसलिए अब इनका मूड नहीं है, तो उन्होंने अगला त्यारा भी कैंसिल कर दिया है, 27 वाला भी 29 वाला भी। इस वक्त $12 लाख कैनेडियन गवर्नमेंट इजाफी जुर्माना फाइन कर चुकी है, गिलास तोड़ा, 12 आने खाया पिया कुछ नहीं है, पानी वहाँ के वहाँ पड़े हुए हैं और ये चार्टर त्यारे यहाँ पहुँच चुके हैं वापस खाली।
अच्छा, ये तो बड़ी अंदर की खबरें दी हैं आपने व्यास भाई, माय गॉड। तो ये तो फिर पाकिस्तान ने बता दिया कनाडा को कि आखिर वड्डा भरा वड्डा ही होता है, हैं?
और एक और वहाँ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की एक और आपको मैं दूं कि वहाँ बड़ा इन्होंने जवाज तलाश किए, उन्होंने उन्होंने कहा अब हम यहाँ जवाज क्या लिखें कैनेडियन गवर्नमेंट को और ये वो, और जो जहाज का कैप्टन था उसने जहाज की फ्लाइट जानी होती है उससे 20 मिनट पहले व्हील्स अप कैप्टन ने अनाउंस करना होता है कि व्हील्स अप कि मैं रेडी हूँ, मेरा पूरा स्टाफ रेडी है और वी व्हील्स अप, वी आर रेडी टू गो। कैप्टन को कहा गया कि तुम कहो कि मैं व्हील्स अप नहीं कर सकता। उसने कहा भाई मैं क्यों करूं, मैं क्यों करूं, मसला तो आपका है, आप बंदे नहीं अंदर बिठा पा रहे, FIA से लाइन नहीं आप क्रॉस कर रहे, तो मैं क्यों कहूं। उसने उसकी मिन्नत की गई कि हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट की और कैनेडियन हाई कमीशन की और UN की हजीमत होगी, उनके लिए एम्बेरसिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फड्डा कर दिया और जाने नहीं दे रहा। उसने कहा मैं नहीं करूंगा, I am ready and I am going to announce व्हील्स अप 20 मिनट। तो अब आप जो है 20 मिनट का टाइम मुझसे एक्सटेंड करवाना चाहते हैं वो करवा लें। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं व्हील्स अप नहीं कर रहा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिल्कुल फिजिकली भी फिट हूँ, मेरा पूरा अमला मौजूद है और मैं लोगों को लेके जाने के लिए तैयार हूँ। तो ये सुबह 4 बजे तक वहाँ बैठे रहे और आखिर में मुंह लटका के वापस कैनेडियन हाई कमीशन का अमला भी चला गया, UN का भी चला गया और अफगानियों को बसों में बिठा के वापस इस्लामाबाद के जो 3 होटल बुक हैं अफगानियों के लिए वहाँ उन्हें पहुँचा दिया।
वेरी गुड, एक्सेलेंट, बड़ी बहुत अच्छा किया। ये मतलब पाकिस्तान को तो बिल्कुल ही मजाक हर किसी ने समझा हुआ है ना, यानी जिस वक्त तो इवैक्यूएशंस करानी है पाकिस्तान, लड़ाई लड़नी है पाकिस्तान, उसके बाद जी तका मार के दीवार के साथ लगा दे। वेरी गुड, वेरी नाइस, दे डिड, मुझे बहुत खुशी हुई है। अच्छा जी, हुण दसो जरा ये पाकिस्तान के अंदर ये जो लेटर गायब हो गए हैं और ये सारा कुछ हुआ है, इसके ऊपर जरा रोशनी डालें और फिर हम शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी जो कहा है कि मेरे साथ जो कुछ बड़ा बुरा किया PTI ने, उसके ऊपर भी जरा रोशनी डालें, लेकिन पहले वो दो पहले वाले क्वेश्चन पे।
अच्छा, अब उससे ज्यादा खतरनाक बात ना करने IMF वाली
कर ले।
मैं लोगों को वो बातें बताना चाहता हूँ जो लोगों को आइंदा 4, 6, 10 दिनों बाद जो नजर आने वाली हैं वो बात बताएं तो फायदा होता है।
चलो ठीक है,
जो कुछ अब तक हो चुका है या शाह महमूद कुरैशी साहब के जो झगड़े हैं वो तो हैं ही हैं, या पंजाब असेंबली में जो हो रहा है, हमें तो आगे की बात करनी चाहिए कि कल क्या होगा।
ठीक है,
IMF ने नया तमाशा इनके साथ मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ ये लगा लिया है कि तमाम तर मिफ्ता इस्माइल क्योंकि कमजोर विकेट पे थे, एक तो उनकी हुकूमत कमजोर है, प्राइम मिनिस्टर कमजोर है, मिफ्ता इस्माइल साहब खुद कमजोर हैं, टेक्निकली कमजोर हैं, उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है कि IMF को और इनको हैंडल कर सकें, क्योंकि जब तक इसहाक डार साहब इस्लामाबाद में थे, जब जब वजीर आजम नवाज शरीफ बने हैं तब तब इसहाक डार ही वजीर खजाना हुए हैं, और इसहाक डार को वजारत खजाना मैंने एज ए कॉमर्स रिपोर्टर भी कवरेज किया है और एज ए प्राइम मिनिस्टर के बीट रिपोर्टर भी मैंने कवरेज किया है, इसहाक डार साहब के साथ मैंने विजिट्स भी किए हैं। इसहाक डार साहब वजारत खजाना में अपनी मर्जी के बगैर किसी चिड़िया को पर भी नहीं मारने देते थे, इसलिए वहां मिफ्ता इस्माइल या XYZ को बैठा भी होता था तो उस बेचारे को कुछ पता नहीं होता था क्या हो रहा है, इसहाक डार साहब खुद सारे मामला हैंडल करते थे। तो मिफ्ता इस्माइल का तो मुफ्ता लगा है, उसको तो पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन IMF एक साहूकार है, साहूकार वो होता है जो आपको लोन देता है और वो एक मुकम्मल बनिया होता है, और मुसलसल अगर आप हर 4 हफ्ते बाद 4 दिन बाद मुंह लटका के बंदे से पैसे मांगने चले जाएं तो अच्छा खासा शरीफ आदमी भी साहूकार बन जाता है, और IMF इस वक्त साहूकार है और ऐसा साहूकार जिसकी बागडोर अमेरिका के हाथ में है। तो साहूकार के पास जब पैसे मिस्टर इस्माइल साहब इस बार लेने गए तो उन्होंने कहा 13 दफा पहले आप हमारे पास आ चुके हैं पाकिस्तान एज अ गवर्नमेंट एज अ पाकिस्तानी नेशन एज अ कंट्री, 13 दफा आप आए थे, हमने हर दफा पैसे दिए और आपने जाके अपने अलल्लों तलल्लों पर वो पैसे उड़ा दिए, अब आप दोबारा इस वक्त आ गए हैं, हम आपको पैसे तो देंगे लेकिन आपको फाइनेंशियल डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा। आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन क्या मुजाहरा करना है, इन्होंने इन्होंने तो साबित किया कि हमने पहले भी पैसे उड़ाए थे, क्योंकि इमरान खान साहब जब पिछले 3 साल से जो राग अलाप रहे थे उसमें वो इनकी शिकायतें लगा रहे थे कि मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी ने ये गड़बड़ की थी और हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन ठीक करेंगे और कर रहे हैं और हम पाकिस्तान बना रहे हैं।
FPR की रिपोर्ट भी कल आई है कि काफी रिकॉर्ड जो है कलेक्शन हुई है टैक्सेस में।
बिल्कुल, उन्होंने तो इमरान खान ने इनकी शिकायतें लगा लगा के और कुछ डिसिप्लिन किया भी होगा, कोई बेहतरी भी की होगी, टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हुई है, सारा कुछ ठीक हुआ है,
लेकिन अब ये दोबारा पुराने आ गए हैं तो उन्होंने पुरानी फाइलें खोल ली हैं इनकी। जब आप पहले प्राइम मिनिस्टर थे और आपकी गवर्नमेंट थी तो आपने ये अल्ले तल्ले किए थे। ऊपर से फिर इन्होंने आते ही जो है वो 36 लाख के 40 लाख के शाहिए साफियों को देने शुरू कर दिए, दौरे करने शुरू कर दिए, पूरी कैबिनेट को लंदन लेके आ गए। वहां एक मकरूर बंदा जो है पाकिस्तान का, चाहे वो इनकी पार्टी का कायद होगा, रहबर होगा, उसके सामने लाके कैबिनेट को बिठा दिया। वहां फैसले हो रहे हैं, बाकी पूरे पाकिस्तान में मुजाहरे हो रहे हैं। ये सारी सिचुएशन और इंस्टेबिलिटी की जो सिचुएशन है उसमें मिफ्ता इस्माइल के मुंह से क्या बात निकले। IMF ने पहले तो इन्हें कहा है कि आप ये करें कि आप 50 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी लगाएं।
यस 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 दैट्स राइट।
अब ये 50 रुपए फी लीटर जो लेवी लगानी है उन्होंने कहा इससे आपने 855 रुपए इकट्ठे करने हैं। और अब आइंदा चंद दिनों में 50 रुपए फी लीटर और लगेगा, जो इस वक्त पाकिस्तान में प्राइस चल रही है उस पर और लगेगा।
यस।
दूसरा उन्होंने कहा है कि डीरेगुलेट करें। अब डीरेगुलेशन का मतलब ये है कि आप गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें खत्म हो जाएगा प्राइसेस के तयन में। और प्राइसेस वो कहते हैं कि जिस प्राइस पे गवर्नमेंट को इंटरनेशनल मार्केट से पेट्रोल मिल रहा है उसी ही पे, उससे ज्यादा पे, मतलब पूरी प्राइस कंज्यूमर से लें और उसके ऊपर जो आपने ड्यूटीज लगानी है और लेवीज लगानी है वो भी लगाएं, मजीद जो आवाम का खून निचोड़ना है निचोड़ें और उसके बाद फाइनल प्राइस होगी और डेली की बुनियाद पे प्राइस अप एंड डाउन होगी। अब आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान जैसे कंट्री में जिसमें दूर दराज इलाकों में, बड़े शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो शायद फौरी तौर पर इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट की जो भी प्राइस रिलीज करेंगे वो चली जाएगी और लोगों में अवेयरनेस भी होती है, वहां आप कोई इस तरह कर भी नहीं सकते। लेकिन जो दूर दराज देहातों में और गांव में और दूर बड़े हाईवेज पे वहां जो गैस स्टेशन हैं वहां लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये जो प्राइस लगी हुई है ये कल की प्राइस है ये आज की प्राइस है। वहां तो मनमानी होगी और फिर क्या गदर मचेगा। आप अंदाजा लगा लें कि गली गली और एक एक गैस स्टेशन पे लड़ाइयां होंगी, लोग बलवे करेंगे और लोग मारेंगे। स्पेशली प्राइस भी जब उनकी 234 रुपीज पर लीटर या 320 रुपीज पर लीटर एस्टिमेट कर रहे हैं कि 324 रुपीज पर लीटर होगी और फिर डेली प्राइस का भी कोई पता नहीं क्या है, तो लड़ाइयां होंगी और फिर वो श्रीलंका वाली सिचुएशन होगी। तो ये बहुत बुरी तरह फंस गए हैं। अब एक और इसमें ये जो पैसे मांगने जा रहे हैं ये बेसिकली इनकी, ये जो दरमियान में बाजवा साहब ने रिजीम चेंज वाला एक प्रोसेस किया, बेसिकली हमें 687 मिलियन मिलने थे मार्च 4 को, वो लेट हुए हुए हैं। जून 3 को 687 मिलने थे, ये टोटल बनते हैं 1374 मिलियन।
yes.
जो अगर कन्वर्ट करें US डॉलर में तो 1.84 बिलियन डॉलर बनते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब 2 बिलियन डॉलर की उम्मीद लगाए बैठे हैं और 2 बिलियन डॉलर की उम्मीद इस तरह लगाए बैठे हैं कि 1.84 तो ये जो पिछले आपने देने थे वो दें और थोड़े से जो हमने सितंबर 2 को आपसे 750 मिलियन SDR लेने थे उसमें से भी थोड़े से पैसे निकाल के तो भाईजान पूरे 2 बिलियन डॉलर कर दें। अब ये जो रवायती बच्चा होता है ना घर में भी जो मांगने वाला होता है तो वो अपने अब्बा जी के पास जाता है और ऐसे ही अब्बा जी की खुशामद करके, अब्बा जी आपने ये बहुत अच्छा किया वो अच्छा किया, तो वो पैसे देना, वो कल आपने मुझे जेब खर्च नहीं दिया था, परसों नहीं दिया था, वो ये हो गए, अब प्लीज मुझे आने वाले 2 दिनों का भी जेब खर्च प्लीज दे देना थोड़ा सा, मैंने ये करना है, मैंने पार्टी करनी है, मैंने पिज्जा खाना है, मैंने फलां करना है। ये हालत है इस वक्त मिफ्ता इस्माइल की कि ये मार्च 4 वाले पैसे नहीं ले सके, जून 3 वाले नहीं ले सके और अब सितंबर 2 को जो हमें इंस्टॉलमेंट मिलनी थी उसमें से भी कहते हैं थोड़े से पैसे एडवांस में हमें दे दें फिर इनका गुजारा होगा। और ये जो पैसे हमें मिलने हैं, अगर पाकिस्तानी कौम ये समझती है कि ये पैसे मिलने से हमें कोई रिलीफ मिल जाएगा, बिल्कुल रिलीफ नहीं मिलेगा। ये 2 बिलियन डॉलर जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या 1.84 बिलियन डॉलर, उससे सिर्फ इनके हुकूमती अल्ले तल्ले और इनके हुकूमती अखराजात पूरे होने हैं, पब्लिक को रिलीफ कोई नहीं मिलना। और फिर ऊपर से हमारे कमर जावेद बाजवा साहब किंग अजीज मेडल भी ले आए हैं सऊदी अरब से, तो अब तो वो और सीना चौड़ा करके फिर रहे होंगे।
अच्छा
हाँ, हम अभी थोड़े पहले शाह महमूद कुरैशी की बात कर रहे थे, फयाज साहब ने तो उस बात को सुना होगा, मगर जस्ट फॉर हमारे सामईन नाजरीन के लिए मैं एक क्लिप देता हूँ, ये सिर्फ 3 मिनट का क्लिप है, आप शाह महमूद कुरैशी साहब को सुनिए और उसके बाद फिर हम फयाज विराना से इसका कॉमेंट्स
लेंगे।
पहले आप सुनिए एक छोटा सा क्लिप।
मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? PTI ने। बरमला कह रहा हूं और खान को भी कहा है। आज पंजाब की यह कैफियत ना होती अगर शाह महमूद यहां से MPA होता। 217 वालों जागो जागो, मुझे क्या फर्क पड़ा, मैं तो वजीर खारजा बन गया, तुम्हें फर्क पड़ा, तुम्हें फर्क पड़ा, मुल्तान को फर्क पड़ा, जनूबी पंजाब को फर्क पड़ा। अगर ये आपका अंदाज नहीं है सोचने का, गुजर जाएगा 17 तारीख, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे लोगों ने कहा मत लड़ाओ जैन को, वाइस चेयरमैन का बेटा हार गया, बड़ी बेइज्जती होगी। मैंने कहा नहीं, कुछ जंगे होती हैं जो लड़ी जाती हैं सिर्फ जीत के लिए नहीं। जब 72 का काफला लेकर गया था, जीतने के लिए नहीं गया था। मेरे खिलाफ मेरी अपनी पार्टी ने साजिश की, और 2018 में मुझे यहां से सूबाई असेंबली का मेंबर हरवाया। किसने? पीटीआई ने, बरमला का।
जी
जी, तो ये आपने सुना है जनाब नाज़रीन, ये माजिद भाई ने एक दफा रिपीट भी कर दिया इस चीज को ताकि आप अच्छी तरह सुन लें कि वो कह रहे हैं जी कि मुझे मेरी पार्टी पीटीआई नहीं रहा। हाँ जी फियाज भाई, की कहते हो?
बिल्कुल, शाह महमूद कुरैशी साहब का इस वक्त जो है ये कहना बनता है। आपको याद होगा कि मुल्तान में और लोधरा वाले दूसरे साहब जो हमारे जहांगीर तरीन साहब थे, इनकी एक पुरानी आपस में चल रही थी, और जब तक जहांगीर तरीन साहब पीटीआई में थे उस वक्त तक शाह महमूद कुरैशी साहब अपने आप को बहुत अनइजी फील करते थे, क्योंकि वहां बाकायदा दो ग्रुप थे, एक जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप था और एक शाह महमूद कुरैशी साहब का ग्रुप था। दोनों अपनी जगह पार्टी में इंपॉर्टेंट थे, एक वाइस चेयरमैन थे और एक सेक्रेटरी जनरल थे। तो अब वो जहांगीर तरीन साहब नहीं है, और ये प्रूव हो गया कि जहांगीर तरीन साहब जो है सिर्फ नाराज नहीं हुए, पहले बहुत अच्छा उन्होंने सबर